बनारस एक ऐसा शहर या फिर एक ऐसी जगह जहां आकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे दुनिया के किसी विचित्र कोने में आ गए हो। बनारस जाने का डिसीजन, दरअसल ये बात है फरवरी महीने की। फरवरी लगभग खत्म ही होने वाला था और मैं जयपुर से आकर अपनी तैयारी कर रहा था कहीं और निकलने की। जयपुर तो मैं अपने भाइयों के साथ गया था, लेकिन इस बार मैं कहीं अकेले जाना चाहता था। इसी दौरान मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी बनारस की, जिसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरी अगली ट्रिप जो होगी वो होगी बनारस की। स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप, देखते ही देखते दिन निकलते गए और 7 मार्च का दिन नज़दीक आ गया, जिस दिन मेरी रात की ट्रेन थी बनारस के लिए। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन को निकलने में सिर्फ 9 मिनट की देरी थी। मैंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, दौड़ते दौड़ते अपने प्लेटफॉर्म की तरफ गया और जल्दी से जाकर ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा, मैं अपनी सीट की तरफ गया तो वहां पर पहले से ही एक व्यक्ति बैठे हुए थे। अब क्योंकि ये जो टिकट थी वो थी REC, इसका मतलब यह है कि मुझे अपना पूरा सफ़र वो एक सीट उस इंसान के साथ शेयर करनी थी। इस बात का मुझे थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि सिर्फ आधी सीट मिली, लेकिन उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी बनारस शहर तक पहुँचने की। खैर, सफ़र रात का था तो एक ही सीट पर जैसे तैसे करके पसर गए और पूरी रात हिलते डुलते सुबह सुबह पहुँच गए अपनी मंजिल पर। जब आप कहीं जाने के लिए हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो ना, तब आपको वहाँ पहुँचकर एक अलग सा ही एहसास होता है, जो मुझे भी हो रहा था जब मैं अपना बैग कंधे पर और अपने हाथ में कैमरा लेकर रेलवे स्टेशन पर उतरा। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे और मैं रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ निकला। बाहर निकलते ही एक ऑटो वाला मेरी तरफ BHU चिल्लाते हुए आया। मुझे पहली बार में तो समझ ही नहीं आया कि वो कह क्या रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है 80 घाट। 80 घाट बनारस का एक बहुत ही फेमस घाट है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि 80 नदियों का पानी वहां पर आकर के मिलता है, जिसके कारण उस घाट का नाम 80 घाट पड़ा है। खैर, उस ऑटो वाले ने मुझे 80 घाट के थोड़े से पहले उतार दिया और मुझसे कहा कि थोड़ा सा आपको पैदल चलकर जाना होगा घाट तक जाने के लिए। तो मैंने उसको पैसे दिए और मैं पैदल पैदल घाट की तरफ निकल गया। लगभग 5 मिनट चलने के बाद मुझे घाट की एक झलक नजर आई और आगे बढ़ते बढ़ते मैं घाट तक पहुंच गया। मेरी आंखों के सामने गंगा नदी बह रही थी और सनराइज हो रहा था। उस नज़ारे को शायद मैं कभी भूल पाऊंगा। साथ ही साथ घाट पर बहुत सारे लोग थे जो कि नहा रहे थे, काफ़ी सारी नाव थी जो कतार में लगी हुई थी और बहुत सारी नाव थी ऐसी जो नदी में इधर से उधर जा रही थी। उस समय वहाँ पर एक सफाई अभियान भी चल रहा था, जहाँ पर एक ग्रुप के बहुत सारे लोग थे जो घाट की साफ सफाई में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे। अब उस समय मेरा एक मन कर रहा था कि मैं भी जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि मैं घाट पर बहुत जल्दी आ गया था, लगभग 5:30 बजे, और एक मन मेरा कर रहा था कि मैं नाव में जाऊँ और वो जो सुबह का जो ऑरेंज आवर था ना, उसे अपने कैमरे में कैप्चर करूँ। तो मैंने वही डिसाइड करा, क्योंकि अगर वो 1 घंटा भी निकल जाता ना, तो वो सनराइज़ वाला जो टाइम था वो मैं मिस कर देता। लेकिन इतनी दूर आकर मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था। तो मैंने एक छोटी नाव चलाने वाले से बात करी और उसके साथ उसकी नाव में घाट के पार चला गया। इसी दौरान मैंने उस पल को कैमरे में कैप्चर करा जब सनराइज़ हो रहा था, बहुत सारी बोट दिखी जिनकी मैंने फ़ोटोज़ ली, उस पूरे मोमेंट को मैंने अपने कैमरे में कैप्चर करा। घाट के पार गया, वहाँ पर जाकर मैंने भी नहा लिया और फिर मैं उस नाव वाले के साथ वापस आ गया। नहाने के बाद मैं जैसे ही घाट से बाहर की तरफ निकला, मुझे एक चीज़ की बड़ी कमी महसूस हो रही थी और वो था मेरे माथे का तिलक, जो कि लगा हुआ नहीं था। अब मैं जैसे ही और आगे की तरफ बढ़ा, मुझे एक मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर 3 बच्चे जो कि मेरी ही लगभग उम्र के थे, वो पूजा पाठ कर रहे थे। मैंने उन्हें ग्रीटिंग्स दी, थोड़ा उनसे बातचीत करी, उनके बारे में जाना, थोड़ा अपने बारे में बताया और थोड़ी ही देर बाद मैंने उनसे कहा कि आप मेरे माथे पर वैसा तिलक लगा सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्हीं में से एक बच्चे ने चंदन की लकड़ी ली और उसे घिसने लगा। बूंद बूंद पानी डालकर उसका थोड़ा सा उसने लेप बनाया और मेरे माथे पर 3 उंगली करके तिलक लगा दिया। तिलक लगाकर तो मतलब समझो एक अलग सी खुशी हुई। ये सब होने के बाद मैंने उन्हें थैंक यू बोला और उनके साथ एक फ़ोटो ली। आखिर ये पल भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार था। अब समय था भगवान शिव के फेमस मंदिर में जाने का, जो कि था श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर। आज से पहले मैं किसी भी विशाल मंदिर में नहीं गया था, और जब मैं मंदिर की ओर कैमरा से शूट करते हुए जा रहा था तो काफ़ी सारे पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया और कहा कि आप इसको अंदर लेके नहीं जा सकते। अब मेरा सामान कहीं तो मुझे रखना था, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी दुकानें देखी जो कि लॉकर सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, फ्री लॉकर सर्विस। बस शर्त यह थी कि आपको मंदिर में अंदर जाने के लिए जो प्रसाद है वो उन्हीं से लेना पड़ेगा। तो सेम मैंने भी वैसा ही किया, एक मैंने दुकान ढूंढी और अपना सामान उनके लॉकर में रखा, लॉकर की चाबी ले ली और उनसे प्रसाद लेकर मैं मंदिर में चला गया। लाइन काफ़ी लंबी थी, लगभग 1 से 2 घंटे लाइन में लगने के बाद मुझे दर्शन करने को मिले और मैंने अच्छे से वहाँ पर दर्शन किए और बाहर आ गया। दर्शन करने के बाद मैंने वहाँ से अपना कैमरा ले लिया और लॉकर की उनकी चाबी उन्हें वापस दे दी और उसके बाद मैं चला गया दशाश्वमेध घाट की तरफ। काशी विश्वनाथ का मंदिर दशाश्वमेध घाट के पास ही पड़ता है। सुबह के लगभग 10 बज चुके थे और धूप बहुत तेज़ हो गई थी और मैं पैदल पैदल वहाँ से 80 घाट की तरफ चला गया। धूप में ही मैं घाट पर धूप में ही पैदल पैदल चला गया। दरअसल ये जितने भी घाट हैं ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, बस इनके बीच में कुछ दूरी होती है और दूसरे कई सारे घाट भी होते हैं। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद मैं एक घाट के किनारे पर पहुंच गया। वहां पर 2 लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे, काफ़ी सारे कबूतर थे जो बार बार उड़ उड़ कर दाना भी चुग रहे थे और एक पुजारी थी जो वहां पर बार बार इधर से उधर घूम रहे थे। वो एक जगह जाते, वहां पर रुकते, कुछ सोचते और फिर एक से दूसरी जगह जाते, फिर वहां पर रुकते, फिर कुछ सोचते और फिर एक से दूसरी जगह जाते। ऐसे करके वो बार बार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। मैं उन्हें काफ़ी देर से देख रहा था। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत था, बस वहाँ पे जो नाव थी, जो कि मोटर वाली नाव थी जो कि नदी में इधर से उधर जा रही थी, उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ बैठकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। मेरे वहाँ 1 से 2 घंटे बैठने के बाद वहाँ पर एक फोटोग्राफर्स का ग्रुप आया जो कि एक प्री वेडिंग शूट कर रहे थे। मैंने उनसे कैमरे के बारे में काफ़ी कुछ जाना और वो भी थोड़ी देर वहाँ मेरे साथ बैठे। फिर बातें करते करते उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग सारनाथ टेम्पल जा रहे हैं जहाँ मुझे भी जाना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है तुम हमारे साथ चल सकते हो, हमारी गाड़ी में काफ़ी जगह है। तो फिर मैं उन्हीं के साथ उनकी गाड़ी में चला गया। मैं उनके साथ निकल तो गया पर मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरा पेट ज़ोरों से दहाड़े मार रहा था और उन लोगों ने भी आई थिंक सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो इसीलिए रास्ते में वो मुझे लेकर गए बनारस का सबसे फेमस दाल बाटी चूरमा खिलाने। मेरा तो 2 बाटी में ही पेट भर गया और उन लोगों ने लगभग 4-4 बाटियाँ खाई। बनारस की ट्रिप के दौरान मुझे जितने भी लोग मिले सभी बहुत अच्छे थे और आई थिंक एक ट्रैवलर की, एक टूरिस्ट की यही इच्छा होती है कि वो जहाँ भी जाए उसे एटलीस्ट वहाँ के लोग अच्छे मिलें। खैर, दाल बाटी चूरमा खाकर हम वहाँ से निकले और लगभग आधे घंटे में उन्होंने मुझे सारनाथ मंदिर पर पहुँचा दिया। अब जो सारनाथ मंदिर है वो गौतम बुद्ध का एक बहुत पुराना मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि वहीं पर गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म के बारे में बताया था। मैंने मंदिर घूम लिया, हालांकि वहाँ पर बहुत कम भीड़ थी। मंदिर घूमने के बाद मुझे बहुत जोर से प्यास लगने लगी तो मैंने वहीं पर एक नारियल का पानी पिया जिससे मैंने अपनी प्यास बुझाई। टाइम लगभग निकल ही रहा था और मुझे अब वापस भी जाना था घाट की तरफ, और वापस जाने के लिए मैंने कुछ ऑटो वाले से वहाँ पर बातचीत करी, वहाँ पर बहुत सारे ऑटो वाले थे, तो एक ऑटो वाले को फाइनल करके मैं वहाँ से घाट की तरफ वापस निकल गया, दशाश्वमेध घाट की तरफ। शाम को दशाश्वमेध घाट पर आने का एक और कारण यह था कि मुझे वहाँ की फेमस गंगा आरती के कुछ मोमेंट कैप्चर करने थे। मैं वहाँ पर लगभग 4 बजे पहुँच गया था और आरती शुरू होने में लगभग अभी काफ़ी टाइम बाकी था, लगभग 2 से 2.5 घंटे बाकी थे, तो मैंने सोचा एक और बार बोट लेकर घाट के पार चलते, और मैंने वैसा ही किया। और ये सारे लम्हे भी धीरे धीरे मेरे कैमरे में कैद हो रहे थे। घाट के पार जाने में और वापस आने में टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, और आरती की तैयारी घाट पर होती हुई मुझे दिखने लगी। मंजर कुछ ऐसा था कि जैसे ही आरती लगभग शुरू हुई वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ हमारे साथ शामिल हो गई। कुछ लोग घाट पर आकर बैठ गए तो कुछ लोग नाव में बैठकर आरती का दर्शन का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन वो नज़ारा देखने लायक था। मानो पूरी गंगा नदी छोटी छोटी बड़ी बड़ी नाव से भर गई थी, वहाँ सिर्फ नाव और उनमें बैठे लोग ही नज़र आ रहे थे। खैर, धीरे धीरे सूरज ढल गया और आरती शुरू हो गई। 5 लोगों के लिए वहाँ पर छोटी छोटी पालकी तैयार की गई थी जहाँ पर खड़े होकर वे 5 पुजारी आरती कर रहे थे। मेरी सजेशन तो आपसे ये है कि अगर आप बनारस आओ, कुछ देखो ना देखो, मगर ये आरती आपको जरूर देखनी चाहिए। आरती देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मानो बनारस आना सफल हो गया। शाम के लगभग 7:30 या 8 बज चुके थे और मेरी ट्रेन थी रात के 11:30 बजे बनारस के रेलवे स्टेशन से। आरती होने के बाद मैं तुरंत घाट से निकला और क्योंकि भूख भी लग रही थी इसीलिए सबसे पहले मैंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा और वहां पर जाकर पेट पूजा करी। एक और मेन काम जो अभी अधूरा था और वो था बनारस का फेमस पान। यहाँ का पान ना खाकर जाएं ऐसा कैसे हो सकता था। खाना खाने के बाद मैंने आसपास पान की दुकान ढूंढी और जाते जाते बनारस के फेमस पान का आनंद लिया। इसी के साथ यहाँ पर ये एक सफर खत्म होने को आया। मैंने घाट से ऑटो पकड़ा और सीधा बनारस के रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया और रात की ट्रेन पकड़कर सुबह मैं पहुंच गया वापस अपने शहर दिल्ली। इस एक दिन के सफर ने मुझे ये बताया और मैं आपको बता रहा हूँ कि बनारस की कुल्लड़ वाली चाय, कचौड़ी विद जलेबी, बनारसी पान, बनारस के घाट, गंगा जी की आरती और दाल बाटी चूरमा, इन सब चीज़ों का अनुभव अगर आपने नहीं किया तो भैया जी बनारस का सफर अभी अधूरा है।